ओम शांति। आप सभी थोड़ा आगे आ जाएंगे, सभी सोफा में आकर के बैठ जाएंगे। आदरणीय उर्मिला दीदी जी का भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। दीदी जी अभी हमको मनसा सेवा और संस्कार परिवर्तन विषय पर बहुत अच्छा ज्ञान अमृत से भरपूर करेंगी। आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 17 वर्ष की आयु में ही इस ज्ञान के संपर्क में आई। आपका जन्म 1964 में हुआ और आपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में 1985 में समर्पित रूप से सेवाएं देना प्रारंभ की है। प्रारंभ के 10 वर्ष में क्षेत्रीय मुख्यालय चंडीगढ़ में रह करके विभिन्न शहरों पर आपने सेवाएं प्रदान की हैं। 1993 में 15 दिवसीय भारत एकता युवा साइकिल यात्रा का सफल नेतृत्व आपने किया है। 2000 में शिव संदेश रथ यात्रा में 1 मास तक आप सह संचालिका के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं। 2001 में महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिक यात्रा में आध्यात्मिक सेवाएं आपने प्रदान की। आप भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे आसाम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल में विभिन्न विषयों पर प्रवचन, सेमिनार आदि में सफल प्रस्तुति आपने दी। वर्तमान समय आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में ज्ञानमृत मासिक पत्रिका तथा त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के संपादन के साथ साथ आप एक राजयोग प्रशिक्षिका के रूप में सेवारत हैं। आदरणीय उर्मिला दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मुरली में हम बच्चों को बहुत सुंदर होमवर्क दिया। कौन सा होमवर्क दिया? हर घंटे में अभ्यास करना है कि भाई सेकंड में बिंदु लगा। और बाबा ने कहा इससे पता पड़ जाएगा कि कौन 8 की माला में आएगा, कौन 108 की माला में आएगा, कौन 16,000 वाली माला में आएगा। तो बाबा को रिजल्ट नहीं निकालना पड़ेगा, अपन अपना रिजल्ट आपे निकालेंगे। तो आप सब ने शुरू कर दिया ना होमवर्क। अब ये जो होमवर्क बाबा ने दिया, इससे पहले बाबा ने 2 बातें और बताई, एक मनसा सेवा की और एक संस्कार परिवर्तन की। अब हमें कैसे पता पड़े कि हमको कौन से संस्कार का परिवर्तन करना है, कौन सा संस्कार हमारा ठीक है, कौन सा खराब है? कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन दूसरे उसके उसी संस्कार से परेशान रहते हैं। तो कैसे चेकिंग हो? संस्कार हमारी वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन इनके द्वारा तो दूसरों के आगे प्रकट होता है। इससे पहले संकल्प रूप में अंदर पैदा होता है, और जब संकल्प रूप में अंदर पैदा होता है तो खुद के आगे प्रकट होता है। दो स्थिति हो गई ना, संकल्प रूप में खुद के आगे, और फिर वो कर्म व्यवहार वाणी बन गया तो दूसरों के आगे। तो हमको तो उसकी चेकिंग संकल्प रूप में ही करनी पड़ेगी, फिर जब वो दूसरों तक पहुंच गया तो उसकी चेकिंग दूसरे करेंगे, हमारे हाथ से तो बाजी निकल गई। अब संकल्प रूप में उसकी हमको चेकिंग करनी है तो एक तो हमारी ये आदत होनी चाहिए कि हम अपने हर संकल्प को चेक करें, ये एक नेचर बननी चाहिए। जैसे दुनिया में कई माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे को एक बार जैसे नहला धुला दिया, खिला पिला दिया, उसके बाद उसको फ्री छोड़ देती हैं, भाई ठीक है खेले जो मर्जी करे। लेकिन कई माताएं ऐसी होती हैं उसकी हर एक्टिविटी पे बड़ी दृष्टि रखती हैं, कहाँ खेलता है, किसके साथ खेलता है, कैसे खेलता है। तो हम ब्राह्मणों में भी कई बच्चे ऐसे ही हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना मन बच्चे के समान और बुद्धि इसकी माँ है, तो कई बच्चे तो जागरूक हैं जो हर घड़ी मन के ऊपर नजर रखते हैं, मेरे अंदर क्या संकल्प उठा, क्यों उठा, क्या इस संकल्प की जरूरत है, क्या ये इस समय उठना चाहिए, क्या ये पॉजिटिव था, क्या ये नेगेटिव था, क्या ये बाप दादा के समान संकल्प है। अगर इस संकल्प का दूसरों को पता पड़ जाए तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। घड़ी घड़ी हर संकल्प के ऊपर जैसे दृष्टि, और कई बच्चे फिर लापरवाह हो जाते, कई देर बाद शुद्ध लेते हैं। तो नंबर एक, संकल्पों को चेक करने की एक हैबिट पड़ जाए, और दूसरी बात फिर चेक करने के बाद ये भी तो पता पड़ना चाहिए ना कि ये ठीक है कि खराब है। अब चेकिंग तो हो गई, भाई मेरे अंदर ये संकल्प पैदा हुआ, लेकिन अगर यही मालूम नहीं है ठीक है कि गलत है तो फिर वो पैदा होता रहेगा, पैदा होता रहेगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि ये श्रीमत प्रमाण है और ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, और ज्ञान होने के बाद फिर उसको परिवर्तन करने की शक्ति और लगन चाहिए। नहीं तो केवल चेक किया और चेंज नहीं किया तो भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये तीन स्टेप हो गए। प्रथम स्टेप है संकल्पों को बार बार चेक करने की आदत, दूसरी बात चेक करके ये समझना कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, और तीसरी बात अगर वो ठीक नहीं है तो उसको बदलना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फ्रूट की टोकरी भरी पड़ी है, उसमें कई प्रकार के फल हैं, केला सेब संतरा अमरूद वगैरह वगैरह। आप जब उस टोकरी के नजदीक से गुजरे तो आपको बदबू आई, तो आपके मन में तुरंत क्या ख्याल आएगा, कोई ना कोई फल गल गया है। तो आप उसको उठा करके देखेंगे, भाई अमरूद गल रहा है, उसकी बदबू थी, उसको उठा करके फेंकेंगे, और जैसे ही आप उठा के फेंकेंगे टोकरी खुशबू देने लगेगी, फल में से तो खुशबू आती है। इसी प्रकार से कैसे पता पड़े कि हमारे अंदर कोई खराब संस्कार है, अगर कोई खराब संकल्प बार बार पैदा होता है इसका मतलब अंदर कोई खराब संस्कार है, क्योंकि संस्कारों से ही संकल्प पैदा होते। सारे संस्कार खराब नहीं है, जैसे टोकरी में सारे फ्रूट खराब नहीं है। अब टोकरी में 50 फल अच्छे ही हैं, लेकिन बदबू तो एक ही बहुत है ना। तो हमारे अंदर 50 संस्कार अच्छे ही हैं, लेकिन एक ही संस्कार हमारा खराब है। तो उसके कारण बार बार गलत ख्याल आता आएंगे, बार बार गलत ख्याल आता आएंगे। एक ही संस्कार, वो संस्कार चाहे इस जन्म का बना हुआ है या वो 63 जन्म का पुराना संस्कार है। कई संस्कार इस जन्म में भी बनते और कई पुराने कई जन्मों के भी होते हैं, उसका भी पता पड़ जाता है। कैसे पता पड़ेगा? जैसे मानो एक बच्चा है, बड़े सात्विक परिवार का है, तो उसने घर में शुद्ध खाया, शुद्ध बोला, सब कुछ, लेकिन उसको जब वो 16 साल का हुआ, घर वालों ने हॉस्टल में भेज दिया। अब हॉस्टल में जाने के बाद उसको संग गलत लगा और उसने गलत चीजें खानी पीनी शुरू कर दी, और अब उन चीजों के खाने पीने के संकल्प बार बार पैदा होते, तो ये कौन सा संस्कार है? ये तो पिछले जन्म का नहीं है ना, इसी जन्म में बना है ना, 16 साल की आयु के बाद बना है ना, उससे पहले तो था नहीं। तो इस जन्म में भी कुछ बनते हैं और कुछ पिछले जन्मों के भी होते हैं, तो उस आधार पर अपन चेक कर सकते हैं। तो ये जो मेरे को बार बार संकल्प पैदा होता है, इसका मतलब अंदर में संस्कार है, कमजोरी है, और अल्पकाल के लिए मैंने उस पर नियंत्रण किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर नॉन वेज खाया है, एक छोटा सा मिसाल लेते हैं, अब ज्ञान में आने के बाद उसने नॉन वेज छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वो नॉन वेज के बाजार में से निकला तो उसको एकदम जैसे सब स्मृतियां आ गई, मैंने ये भी खाया था, ये भी खाया था, ये पूरी। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान के कारण उसने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो स्मृतियां हैं, उसके अंदर जो संस्कार है, उसकी जो जड़ी है, वो भी अंदर पड़ी है। ऊपर का पेड़ तो कट गया, जड़ें पड़ी हैं, और ये जड़ें ऐसी खतरनाक होती हैं कि इनसे दोबारा पत्तियां कब निकल आई मालूम नहीं पड़ता। संस्कार मिट गया, अगर मिट गया तो उस दृश्य को देख के उसके मन में क्या ख्याल आएगा कि ये भी कोई खाने की चीज होती है, मुझे तो लगता नहीं मैंने किसी जन्म में ये सब कभी किया होगा, बिल्कुल याद नहीं है मुझे तो। लोग कहते हैं मुझे कि तुम भी ऐसे थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। लोगों को याद होगा, मुझे याद नहीं। मैं तो बहुत स्मृति पे जोर डालता हूं, तब भी मुझे तो याद नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? उसने जड़ भी काट दी, इसलिए बार बार स्मृति पे जोर देने पे भी उसको याद नहीं आ रहा। तो अगर जड़ कट गई तो संकल्प नहीं आएंगे, संकल्प आ रही है इसका मतलब अंदर में जड़ पड़ी हुई है। अब उस जड़ को कैसे काटा जाए, इसके लिए जैसे बाबा कहते हैं बार बार शरीरी बनने का या बिंदु रूप बनने का अभ्यास करो तो वो जो पुराना संस्कार है ना, वो डिलीट हो जाएगा, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। कंप्यूटर में जब फाइल नहीं रहती है, प्रोग्रामिंग, उसमें कोई बाहर की चीज अंदर वो लेगा ही नहीं, वो लेता कब है? जब उसके अंदर वो फाइल मौजूद होती है तब वो बाहर की चीज को एक्सेप्ट करता है। अंदर वो प्रोग्राम आपने डिलीट कर दिया तो लाख बाहर से आप पेन ड्राइव, सीडी, फोटो, अब उसमें कैनन का अंदर प्रोग्राम नहीं है तो आप भले कैनन कैमरे से वायर जोड़ करके उसमें डालो, वो लेगा ही नहीं। तो जब अंदर वो संस्कार नहीं है तो बाहर वो कितने भी दृश्य देख ले, वो दृश्य अंदर जाएगा नहीं, जाएगा तो टिकेगा नहीं, क्योंकि अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमने चेक कर लिया कि मेरे अंदर जड़े हैं, और फिर तीसरा कदम है कि मुझे उनका उन्मूलन करना है। तो उन्मूलन के लिए एक तो बीज रूप अवस्था जैसे बताई, लेकिन मान लीजिए बीज रूप अवस्था हमारी नहीं बनती है क्योंकि कर्म में है और इतनी हाई स्टेज हमेशा नहीं रह पाती है, तो एक और विधि है। और वो विधि ये है कि जब भी वो नेगेटिव संकल्प पैदा हुआ, जब भी पैदा हुआ, ऐसे नहीं कि सुबह का दोपहर कर लेंगे, दोपहर का शाम कर लेंगे, जब भी पैदा हुआ आपने उसके ऑपोजिट संकल्प चलाने शुरू कर दिए, देर नहीं की, तुरंत, क्योंकि आपको एक चीज मिटानी है और दूसरी चीज बनानी है। जैसे मान लो वो संकल्प पैदा हुआ और आपने एकदम बहुत फोर्स से अपना सतयुग वाला रूप याद किया, मैं तो देवता था, मैं तो हूँ ही देवता, मंदिर में तो लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और मैंने 2500 साल चेतन रूप में देवताई जीवन व्यतीत किया और उसके बाद आगे के 2500 साल मंदिर में मेरी मूर्ति अभी भी रखी हुई है और उस मूर्ति को लोग कितना सुंदर भोग लगाते हैं, कितना पवित्र चीजों का भोग लगाते हैं, इतनी पवित्रता और शुद्धि से तो किसी को भी भोग नहीं लगता, तो मेरा असली रूप तो वो है, मैं तो देवता हूँ। बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा बच्चे गुप्त रूप में देवता हो, तो इतना फोर्स से उसने अपने इस संकल्प को पैदा किया, मनन किया, लंबे समय तक इस संकल्प का अनुभव किया सचमुच मैं देवता हूँ। वो नेगेटिव संकल्प तो आया था केवल एक सेकंड के लिए, लेकिन उसके बदले ये बढ़िया संकल्प उसने 5 मिनट लगातार किया, तो क्या हुआ, वो लाइन छोटी हो जाएगी और ये लाइन ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। संकल्प मन में अगर वो पॉसिबल हो तो लिखे, मैं कौन हूं, मैं होवनहार देवता हूं, वैष्णव हूं, मेरे तो संकल्प में भी अशुद्धि नहीं आ सकती है, लोग तो मेरी पवित्रता को देख करके पवित्रता की प्रेरणा लेते हैं, मेरा तो खान पान दृष्टि वृत्ति कमल तुल्य है, मेरी मेरी महिमा तो कमल, तुलना तो कमल के साथ की जाती है। 2-3 पन्ने उसने लिखे तो क्या होगा, अगली बार जब वो संकल्प पैदा होगा ना, तो पैदा होने के साथ ही ये सारी जो प्रक्रिया की ये भी साथ में याद आएगी, पिछली बार भी ये संकल्प पैदा हुआ था तो मैंने कागज पे लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, तो वो भी याद आया, लेकिन साथ में ये भी तो याद आ गया ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसकी दाल तो गलेगी नहीं। जब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब उसको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, जब आप उसको काम में नहीं लगाएंगे, तो वो जो फाइल है वो यूज नहीं होगी, थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगी। तो बाबा ने कहा संस्कारों का परिवर्तन करो। अब ये तो हमने एक मिसाल लिया खाने का, अब समझो किसी को क्रोध आता है, अब क्रोध का संकल्प भी तो भीतर ही आता है ना, पहले मुंह से तो बाद में प्रकट होगा, दृष्टि से बाद में। अब जैसे ही अंदर संकल्प पैदा हुआ, इसने ये क्यों किया, ये कौन होता है, इसको तो आज मैं कुछ कहूं, है ना, तो जैसे ही संकल्प आया आपने चेक कर लिया कि ये तो ना तो बाप दादा का संस्कार है, ना देवताओं का संस्कार है, मुझे तो देवता बनना है, बाप दादा को फॉलो करना है, अभी इसके लिए भी आपने वही विधि अपनाई, एक कागज उठाओ और उसके 2-3 पन्नों में लिखो कि मैं तो शांति देवा हूँ, लोग तो मेरे से शांति का भीख मांगते हैं, मैं तो अक्षमाशील आत्मा हूँ, दुनिया में गलतियाँ तो सबको ही करनी है, किस किस को मैं सुधारूंगा, वो सुधरे या ना सुधरे मैं जरूर बिगड़ जाऊँगा, मैं क्यों अपने संस्कार को खराब करूँ, 63 जन्म तो मैंने खराब किया, क्या ये जन्म भी मैं खराब करने में ही लगा दूंगा, फिर मैं देवता कैसे बनूंगा, बाबा को मुँह मैं कैसे दिखाऊंगा, मुझे धर्मराज के सामने भी तो जाना है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुधर जाए और मुझे धर्मराज से फिर सजा खानी पड़े, सजा भी खानी पड़े, पद भी कम हो जाए, मुंह भी नीचा हो जाए, इसलिए मुझे अपने को बचाना है, वो अपने कर्म को वो जाने, मुझे तो अपने कर्म को सुधारना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे माफ करना है, मुझे खुद को बदलना है, फर्ज करो आपने पूरा एक पन्ना ऐसा लिखा, आप लिखेंगे तो वो जो संकल्प उठा था ना वो तो शांत हो जाएगा, अब अगली बार फिर क्रोध का संकल्प आएगा तो आपको ये बात याद आ जाएगी। अब कई कहते हैं बहन जी हम सोचते तो हैं कि ऐसा करना चाहिए, हमको मालूम है इस युक्ति का, लेकिन क्या करें, सोचने तक ही रह जाता है, हाँ हाँ आज आया था बदलेंगे अपने आप को, मन को समझाएंगे। अगर आपने उसको दबा लिया, दबाने से वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपने डर के मारे दबाया, शर्म के मारे दबाया, किसी बड़े को देख करके दबाया, किसी बीके ब्राह्मण को आसपास खड़े देख करके दबा लिया, या कोई भी ये लोग खड़े हैं ये क्या कहेंगे, दबा लिया, तो जैसे ही वो वातावरण पूरा होगा वो फिर प्रकट हो जाएगा। उसको मालूम है कि हाँ मेरे प्रकट होने का समय आ गया, लेकिन दबाना नहीं है, वो यूजलेस है। ये हमें अपने मन को सिखाना है, अपने को आप पे सिखाना है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, शाम को जब चार्ट लिखूंगा तब मैं अपने मन को समझा लूंगा, तब उस वो जो संस्कार था ना, उस संस्कार के प्रति आपकी जो अंदर की समझ शक्ति थी वो उस समय तक धूमिल हो जाएगी, क्योंकि उसका फोर्स कम हो जाएगा। उस समय आपको अपने आप को क्या समझाना है वो आएगा नहीं, मन में उतने फोर्स से नहीं आएगा। जब गलत संकल्प फोर्स से आता है तब उसके लिए अच्छे संकल्प भी उतने ही फोर्स से आ सकते हैं, उसके विपरीत। इसलिए उसी समय आप, और ये इससे क्या फायदा होगा कि वो एक प्रकार से गलत संकल्प ही आपका शिक्षक बन जाएगा। जो चीज आपको गिराने के लिए पैदा हुई थी वही आपको उठाने के निमित्त बन जाएगी। उसके सदके आपको मनन की आदत पड़ेगी, लिखने की आदत पड़ेगी, और उसके कारण आपको भीतर से वो जो गुप्त ज्ञान है उसको बाहर प्रकट करने की आदत पड़ेगी, और फिर आप उसके अनुभवी बनेंगे तो दूसरों को सुनाने की भी आदत पड़ेगी। लेकिन इसके लिए ऐसी लगन चाहिए कि मुझे अब भी इसी समय खत्म करना है। जैसे हमारी थाली में छिपकली गिर जाए तो क्या करेंगे, पड़ी रहे बेशक, बैठे रहेंगे क्या? उस समय क्या होता है, थाली कहीं और हम कहीं। तो ये जो संकल्प पैदा हुआ है तो छिपकली से भी ज्यादा भयानक है। तो इसके लिए भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि अभी अभी सारे काम छोड़ के अभी अपने मन को बताऊं मेरे अंदर मैं तो वैष्णव हूं, ये अशुद्धि आई क्यों, कैसे आई, इसकी हिम्मत कैसे हुई। जैसे कोई डूब रहा हो उसको क्या होता है, अभी मुझे कोई निकाले, कितनी बेचैनी होती है। तो ऐसी बेचैनी होनी चाहिए कि ये मेरे अंदर आए, इसने मुझे टच कैसे किया। जैसे कोई बहुत सफाई पसंद लोग होते हैं ना, उनको अगर थोड़ी भी कपड़े को, जूते चप्पल को मिट्टी लग जाए तो क्या कहेंगे, 100 काम छोड़ के भी धोने भागेंगे। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद में, नहीं नहीं मेरे को पानी दो, मेरे को मैं पहले इसको धो, सारे काम छोड़ के। तो वो इतने सफाई पसंद होते हैं कि उनको इतना भी दाग अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हम भी इतने अंदर से स्वच्छता पसंद हो कि ये संकल्प आया कैसे, ये दोबारा नहीं आना चाहिए, एक बार तो आ गया, अभी मैं इसका परमानेंट प्रबंध कर दूं। जैसे दूसरे का प्रबंध करती है ना कि ये दोबारा मुझे ऐसे ना बोले, ऐसे अपना प्रबंध करो कि मेरे अंदर ये संकल्प दोबारा ना आए। दूसरे को भी दिखा नहीं है, वो तो अंदर ही है, आपने अंदर ही उसका सफाया कर दिया। बाहर आ जाएगा तो कहती है कमान से निकला तीर, जबान से निकला शब्द, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो वो बाहर फैल गया फिर तो आपको गुस्सा करता, 10-20 लोगों ने देख लिया, अब आप उसको कैसे सुधारेंगे। लेकिन अंदर था तभी आपने उससे फायदा उठा लिया, शत्रु आया फायदा उठा लिया। एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक बार एक कारीगर था, मूर्ति बना रहा था, बहुत लगन से मूर्ति बना रहा था, और उसकी बाजू में वैसी ही एक मूर्ति बनी बनाई पड़ी थी ऐसे। तो एक कोई राहगीर जा रहा था, उसने पूछा भाई ये एक मंदिर में 2 मूर्तियां लगानी है क्या, और वो भी एक जैसी। तुम जो बना रही हो ना बिल्कुल डिट्टो, ये देखो ये बनी बनाई पड़ी तो है। तो उस आदमी ने अपने काम में ही ध्यान रखा, बोला हाँ इसमें थोड़ा डिफेक्ट है। तो जो देख रहा था ना उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, देखूं तो सही क्या डिफेक्ट है। बेचारा पांव से लेके सिर तक चक्कर काटता रहा, उसको कोई डिफेक्ट नजर नहीं आया। फिर बोला अरे भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है, डिफेक्ट तो कुछ नहीं दिखता। उसने कहा इसकी नाक में एक छोटी सी दरार है। तो देखने वाले ने देखा नाक में कोई यहाँ कोई दरार होगी छोटी सी, ध्यान से देखा बाल जितनी पतली छोटी सी दरार थी। तो उसके मन में आया देखो मैंने कितना ध्यान से देखा, मेरे को तो ये दरार दिखाई नहीं दी, ये भी कोई चीज़ है, बोला ये भी कोई खराबी है। तो उसने उसको कहा अच्छा तुम इस मूर्ति को कहाँ लगाओगे, बोला पहले 30 फीट ऊंचा एक पिलर बनेगा उसके ऊपर इस मूर्ति को खड़ा करेंगे। तो उसने कहा ये जब इतनी नज़दीक होते मेरे को नाक की ये दरार नहीं दिखाई दी, तो 30 फुट ऊंची होने पर भला किसको दिखाई देगी, ये क्यों मेहनत कर रहा है। तो उसने कहा देखो देखो मैंने इतना ध्यान से देखा है मुझे दिखाई नहीं दी, तो अगर तुम इसको न बनाओ और इसी को लगा दो ना तो कोई भी इसके पास से गुजरेगा मैं गारंटी लेता हूं इसकी नाक की ये दरार किसी को दिखाई नहीं देगी। अब उस कारीगर ने अपनी हथौड़ी छेनी छोड़ दी और ध्यान से उसको देख के कहता है किसी को पता पड़े या ना पड़े पर मेरे को तो पता पड़ेगा ना ये दरार वाली मूर्ति। तो किसी को पता पड़े या ना पड़े कि मेरे में क्रोध है, लेकिन अगर संकल्प पैदा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, हमें दूसरों को थोड़े बताना है, इलाज तो खुद का खुद करना है ना। अब जब बीमारी आती है किसी को, मान लो घुटने में दर्द होता है, तो वो इंतजार थोड़े करता है कि 10-20 लोगों को पता पड़े, जैसे ही आई तो वो भागता है ना, भाई शुरुआत है अभी इसकी कर दो, डॉक्टर दे दो, ये दे दो, वो कर दो, क्योंकि दर्द मेरा मुझे मिटाना, तो बुराई मेरी मुझे मिटानी। किसी को पता पड़ा कि नहीं पड़ा इसका उससे क्या लेना देना। तो जैसे उस पेंटर को ख्याल है कि मेरी चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ये आत्मसंतुष्टि की बात है, ऐसे मेरी जो मूर्ति बन रही है, मैं भी तो देवता हूं, वो तो जड़ मूर्ति बना रहा था, मैं भी तो चेतन मूर्ति हूं, तो मेरी मूर्ति परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे भीतर में भी संकल्प रूप में भी क्यों पैदा हो, मैं उसकी जड़ मिटा के ही चैन लूं। जब ऐसी लगन होगी ना तब संस्कार का परिवर्तन, एक नहीं बहुत प्रकार के संस्कार है, 63 जन्मों के हैं ना, कोई बहुत भयंकर है, कोई थोड़े मीडियम है, कोई जिसको हल्के कहते हैं ऐसे भी हैं, और ये प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं है। आप एक को बिल्कुल डिलीट कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा उसकी सीट लेने के लिए, फिर तीसरा आ जाएगा। इसलिए देखो बाबा ने पूरा संगम युग हम बच्चों को दिया है परिवर्तन के लिए, और करना क्या है बताओ, बाबा ने कोई और काम दिया है? एक टांग पे खड़े हो जाओ, सुबह सुबह उठो, ठंडे पानी में नहाओ, सिर मुंडा लो, वगैरह वगैरह, कितने सारे काम दिए बाबा ने? कोई काम नहीं दिया, केवल एक ही तो काम दिया है कि अपने भीतर जाकर के उन सारी फाइलों को डिलीट करो जो अनजाने में अंदर आ गई है। अब ये जो संस्कार हैं, ये बनते कैसे हैं, इस जन्म की कई बातों को हम अपने सामने लाएं तो मालूम पड़ेगा और इनसे क्या क्या नुकसान है। अब आपने अपने घरों में चाकू तो देखा है ना, सबके घर में किचन में चाकू है ना। मान लीजिए आपने चाकू से मिर्च काटी तो क्या हुआ, वो बहुत तेज मिर्च थी, छोटी मिर्च होती है ना वो बहुत तेज होती है, बहुत तेज थी, और काट के आपने चाकू को एक तरफ रख दिया। अब किचन में दूसरा आदमी आया, उसको सेब काटना था, तो उसने उसी चाकू से सेब काट लिया, और जब खाने लगा तो मुंह ऐसा बनाया जैसे मिर्च खा रहा हो, भी खा तो वो सेब रहा था, पर उसने ऐसा मुंह क्यों बनाया, क्या हुआ, क्योंकि मिर्च का असर आ गया ना, तो जिसने मिर्च काटी थी उसको क्या करना चाहिए था, चाकू को धुलाई करके, और ज्यादा तेज मिर्च हो तो केवल पानी से धुलाई नहीं चाहिए, फिर थोड़ा विम भी लगाना पड़े, तब वो मिर्च का असर खत्म। तो एक काम कर लेने के बाद ये जो आत्मा है ना, इसकी भी धुलाई चाहिए, नहीं तो उस कर्म का संस्कार इसके ऊपर रह जाता है। इसलिए बाबा ने काम दिया ना, ये होमवर्क दिया ना, हर घंटे के बाद बीज रूप बन जाओ। अब आप हर घंटे के बाद बीज रूप बन गए तो जो एक घंटे में आपने काम किए थे ना, उनकी धुलाई हो गई, आपका चाकू साफ हो गया। अब अगले घंटे में आप काम करेंगे तो साफ चाकू से काम करेंगे, तो अगले पर उसका असर नहीं आएगा, वो काम परफेक्ट होगा। और आप बीच में बिंदु बने नहीं और डायरेक्ट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो क्या होता है, पहले कर्म का असर दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे, कोई भी बढ़िया काम नहीं होता। काम तो हम बहुत सारे कर लेते हैं लेकिन बढ़िया नहीं होता। ये होमवर्क बाबा ने हमको पहले भी दिया है लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे यहाँ शांतिवन में हर घंटे के बाद एक गीत बजता है, वो भी उसका उद्देश्य भी यही है। या बाबा ने 5 स्वरूपों का दिया था, उसका उद्देश्य भी यही था। अभी थोड़ा और हाई लेवल का काम बाबा ने दे दिया, बीज रूप बनने का। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो होमवर्क भी तो ऊंचा ऊंचा मिलेगा ना, तो अभी देखना फुल स्टॉप लगता है कि नहीं। फुल स्टॉप तो तभी लगेगा जब आप आत्म स्थिति में होंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा और एकदम कर्म से तुरंत डिटैच होने का अभ्यास होगा, लापरवाह नहीं होंगे। जैसे वो व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा काम तो निकल गया, अब मैं चाकू को ऐसे ही छोड़ दूं, काम तो हो गया, अब आत्मा को संकल्प चलता रहे बेशक, मेरे को तो काम करना था, लेकिन नहीं, काम हो गया पर मेरा मन भी स्थिर शांत एकाग्र पावरफुल बना रहे। सारा दिन में अपन जितने भी कर्म करते हैं, हर कर्म का प्रभाव हमारे पे पड़ता है और वही प्रभाव कालांतर में फिर संस्कार बन जाता है। ये रोज का प्रभाव है, प्रतिदिन का प्रभाव है। कोई भी काम आप देख लीजिए, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और कोई बड़ी लड़ाकू प्रवृत्ति का आदमी आपके सामने आके बैठ गया और अपनी शंका या अपने अनुमान के कारण वो आपसे बड़ी लंबी चौड़ी बहस कर रहा है, आपने ऐसा कर दिया था, आप उसको मना कर रहे हो, अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना मैंने नहीं किया, पर वो आपसे बहस नहीं, नहीं मैंने तो आपका ही नाम सुना था, एक बार देख लो, क्या पता आपकी फाइल में ऐसा मिस्टेक हो, कुछ भी, समझो आधा पौना घंटा और वो आपसे बहुत बहसबाजी करके गया। अब अपन चाहे निर्दोष भी हो लेकिन बहसबाजी करने में थोड़ी एनर्जी तो अपनी भी जाती है ना, बोलना पड़ता है बहुत सारा, तो उसने हमको बुलवा बुलवा के हमारी एनर्जी भी डाउन कर दी और अपन थोड़े चिड़चिड़ा भी गए कि कैसा आदमी है, पीछा ही नहीं छोड़ता है, मैंने कितनी बार ना किया फिर भी बार बार वही बात रिपीट कर रहा। अच्छा, पौने घंटे के बाद वो उठ के गया, तब तक थोड़ा तो असर आया था ना। अब जैसे ही वो उठ के गया, एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके सामने आके बैठ गया, बहुत ही मीठे स्वभाव का, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति, आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाला, और उसने ज्यों ही बात शुरू की, लेकिन आपको आपको तो आपकी चाकू पर तो मिर्च लगी हुई है ना, आपको तो वो पुरानी बात याद है ना, तो उसको देख के भी अंदर से क्या प्रतिक्रिया आएगी, एक और आ गया आप दिमाग खाने, एक तो खा के गया था अभी। क्यों? क्योंकि अभी पिछला प्रभाव है और पिछले प्रभाव से ही हम अगला काम कर रहे हैं। इसलिए घरों में देखा, एक बच्चे पे डांट पड़ती है तो फिर दूसरे पे भी पड़ जाती है, चाहे उसने कुछ किया ही ना हो। इसलिए बच्चे आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, वो कहते हैं अब इसके बाद मेरी बारी है, वो पहले से ही भाग जाते हैं। तो वो जो दूसरा व्यक्ति आके बैठेगा ना, उसको भी आप उतना रेस्पेक्ट के साथ डील नहीं करेंगे जितना आपको करना चाहिए था। अब यहाँ जरूरी क्या है कि जैसे ही वो आदमी उठ के गया, अपन अपनी मन मना भाव की स्थिति में खो जाए, इसने अपना पार्ट बजाया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, और फिर वो जो सामने आके बैठा उससे बात करेंगे तो आप उसके साथ न्याय करेंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और अपने मन को भी पहले से समझा लेंगे कि हर व्यक्ति एक जैसा थोड़े होता, उसने अपना पार्ट बजाया, ये इस आत्मा की भी सुन लूँ, देखूँ ये कैसा पार्ट बजा रहा। लेकिन इतनी शांति और इतनी अच्छी प्रतिक्रिया तब आए जब आप उस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में कम से कम एक मिनट अशरीरी बने, एक मिनट बिंदु लगा करके थोड़ा अपनी एनर्जी को रीगेन करें, तब ऐसा होगा। तो ये घर में भी सब जगह जरूरी है। अब देखो स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल सरलता से समझ में आएगा, बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत उनको लेक्चर देना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझो किसी के चार पीरियड लगातार है, लगातार चार पीरियड पढ़ाने के बाद वो क्या कहता है, भाई मैं तो बहुत थक गया। तो उस थकान को उतारने के लिए उसको लाइट रिफ्रेशमेंट चाहिए, चाय पकोड़ा समोसा या जो भी ठंडा गरम मौसम के अनुसार लोग खाते। अब थका कौन था, चार लेक्चर लगातार दिए, बोलने का काम तो आत्मा करती है, संकल्प भी आत्मा में उठते हैं और वो संकल्प ही वाणी बन करके बाहर निकलते हैं। लगातार आत्मा ने समझो तीन घंटा, चार पीरियड के तीन घंटे तो हो ही जाते होंगे लगातार बोला, तो थकी तो आत्मा थी। लेकिन उस व्यक्ति को क्या लगता है, मैं बहुत थक गया, मैंने शरीर बहुत थक गया, अब वो चाय पिएगा, ठंडा पिएगा, चाय कहाँ जाएगी, आत्मा तक जाएगी क्या, ठंडा पिएगा वो आत्मा तक जाएगी क्या, चाय तो शरीर में जाएगी। वो तो बैठा था कुर्सी पे, बैठ के उसने भाषण किया तो शरीर ने क्या किया, वो तो चला भी नहीं। तो जिस शरीर ने कुछ काम नहीं किया उसको तो चाय पिला दी, उसको ठंडा पिला दिया, और जो तीन घंटे बोली बेचारी आत्मा, उसको कुछ नहीं मिला। अब चाय पी लेने के बाद भी थकान नहीं उतरती है, ठंडा पी लेने के बाद भी थकान नहीं उतरती है, क्यों, क्योंकि जो भूखा था उसको कुछ मिला नहीं। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि थकान आत्मा को हुई है तो देखो, अगर उनको भी ये तरीका आ जाए कि वो एक मिनट के लिए अशरीरी हो जाएं, या चलो ज्ञान की ही किसी बात का मनन करें, या अपने स्वमान का अभ्यास करें, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसकी छत्र छाया में हूँ, मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, तो वो थकान केवल एक मिनट के चिंतन से भी उतर सकती है। इतनी पावर है मेडिटेशन में और बाबा के ज्ञान रत्नों में। लेकिन उनको चूंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि लास्ट पीरियड आते आते तो वो पूरी तरह से फ्यूज हो चुके होते हैं, जैसे बल्ब की डाउन आते 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 बैटरी बिल्कुल डाउन आ जाती है। इसलिए लास्ट पीरियड में क्या होता है, मेजॉरिटी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने वालों की भी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है, पढ़ाने वालों की। फिर वो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई लास्ट पीरियड तक भी हमारी एनर्जी बनी रही, इसके लिए हम क्या करें। तो कितना सुंदर फार्मूला है ये मेडिटेशन का, हर पीरियड के बाद एक मिनट मेडिटेशन करो, अशरीरी हो जाओ, लास्ट तक भी फ्रेश रहेंगे। तो कोई भी कर्म, चाहे वो घर का काम हो, दुकान का हो, ऑफिस का हो, पढ़ाने का हो, सफर का हो, आत्मा को प्रभावित करता है। सफर करते हैं तो खुली आंखों से सफर करेंगे, बंद तो करेंगे नहीं। अब खुली आंखों से सफर करेंगे तो साथी पैसेंजर को देखेंगे, दृश्यों को देखेंगे और कई घटनाओं को देखेंगे, आंखों के थ्रू वो सब चीजें अंदर जाएंगी। और इसलिए बैठे बैठे भी थकते हैं ना भाई, 8 घंटे आप ट्रेन में बैठे थे, आपने कुछ काम नहीं किया, आप क्यों थक गए? क्योंकि आप आसपास की नेगेटिविटी को अंदर ले जाते रहे। ये देखो ये क्या कर रहा है, वो देखो ये ट्रेन चलती क्यों नहीं है, इतना शोर क्यों मचाती है, ये देखो कितनी गंदगी है, ये देखो ये आसपास के लोग कितना शोर कर रहे हैं, ये चुपचाप क्यों नहीं बैठते हैं, पता नहीं कब पहुंचेगी, पता नहीं क्या होगा, ये सब कैसे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स। आप बैठे थे, काम तो नहीं कर रहे थे, तो बैठे बैठे क्यों थके? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स थे। अगर आप वही 8 घंटा मेडिटेशन में लगा देते तो आप ट्रेन से उतरते तो क्या एकदम फ्रेश होते, वाह मैं तो रेस्ट करके उतरा हूं, अभी मैं कितना भी काम कर सकता हूं। तो ये मन थकता है, प्रभावित होता है, और इसलिए बाबा की जितनी भी युक्तियां हैं इस मन को स्ट्रोंग बनाने के लिए, पिछली मुरली में बाबा ने कहा था संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। हमारा संकल्प ही हमको कमजोर बनाता है, और ये जो विधि बाबा ने सिखाई ये सर्वशक्तिवान बनने की विधि। अब हमको मनसा सेवा करनी है, बाबा ने मनसा सेवा के लिए काम दिया। अब आपका मन ही ठीक नहीं होगा तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? मनसा सेवा के लिए एक पावरफुल मन चाहिए, ऐसा पावरफुल जो जिस संकल्प के ऊपर टिक जाए उसके ऊपर टिका ही रहे। जैसे आज बाबा ने कहा नट का मिसाल दिया, बैलेंस का बाबा ने मिसाल दिया, दो विरोधी बातों में संतुलन रखने की आज पूरी मुरली थी। अब नट का क्या है बैलेंस? वो आजकल तो मैंने थोड़े दिन पहले दिल्ली में देखा, गली के बीच में, भीड़ भरी गली के बीच में एक इधर बांस गाड़ के ही दें वो लोग, और पहले तो बड़े चलते थे, आज मैंने तो देखा एक कोई 8 साल की लड़की थी, उसने अपने हाथ में ऐसे डंडा लिया हुआ था, लंबा बांस दोनों हाथों में, और वो उसके ऊपर चल रही थी। पता नहीं वो बांस बैलेंस बनाने में मदद करता होगा, या मुझे ऐसे लगा कि वो गिरने लगे तो उस बांस को शायद जमीन में टिका ले, उसके कारण चोट नहीं लगेगी। और इधर खड़े लोग ढोलक बजाते हैं और वो छोटी सी बच्ची रस्से के ऊपर भीड़ भरे बाजार में चलती है और लोग खड़े हो जाते हैं वहीं पे, फिर वो 2-4 बार चक्कर चलाती है, फिर उस बच्ची के हाथ में ये कटोरा दे देते हैं, फिर देखने वाले लोग कटोरे में पैसे डालते हैं, ये लोगों ने बनाया हुआ है। तो आज बाबा ने बैलेंस की बात कही। अब ये बैलेंस तब बनता है जब उसकी टोटल कंसंट्रेशन उसी पर होती है, ढोलक में भी उसकी आवाज़ नहीं जाती, बाजार के लोगों में भी उस बच्चे का ध्यान नहीं जाता, बच्चे का ध्यान केवल अपने काम में। तो मनसा सेवा कब होगी? आपको किसी एक क्षेत्र की मनसा सेवा करनी है, किसी व्यक्ति की करनी है। बाबा तो कहता है बेहद में रहो, ग्लोब सारे ग्लोब को ही लाइट और माइट दो, लेकिन पर्टिकुलर भी कोई बीमार है, कोई अशांत है, कोई बहुत ही कमजोर आत्मा है, कोई विघन वाली जगह है, तो उसको पर्टिकुलर भी काश देना होता है, तो काम तो मन ही करेगा। तो उसके लिए मन बड़ा शक्तिशाली भी चाहिए और बड़ा एकाग्र भी चाहिए। जहां टिका दिया वहां टिक गया, और बड़ी लगन चाहिए और अंदर में ये दृढ़ संकल्प चाहिए कि ये जो संकल्प है ये सर्वशक्तिवान है और इस संकल्प का रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, मेरा कोई भी संकल्प व्यर्थ जा ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, इसका मतलब उसका कोई भी तीर व्यर्थ नहीं जाता था। तो हमने संकल्प किया और उस आत्मा को टच हो ही गया, इतनी पावर संकल्प में। जैसे गोली होती है ना, एक होती है बंदूक की खिलौने जैसी गोली, बच्चों को खिलौना देते हैं, आपने यहाँ ट्रिगर दबाया और गोली यहाँ जाके गिर गई, वो तो खिलौना होती है। लेकिन एक पावरफुल गोली होती है, आपने यहाँ ट्रिगर दबाया और 2 किलोमीटर आगे भी डेस्टिनेशन को उसने बेध दिया, सीधी जाके लगी। तो संकल्प कितना कितना शक्तिशाली है, ये केवल यहाँ तक ही पहुँच के गिर जाता है या ठीक निशाने पे जाकर के लगता भी है और कार्य को सिद्ध भी करता है। कितनी गति है संकल्प की, कितनी उसमें पावर है, कितनी उसमें संकल्प में एनर्जी है। इसलिए बाबा कहता बहुत काल का अभ्यास जिसके आधार पे संकल्प इतना शक्तिशाली बनता है और निशाने पे जाके लगता है, सफलता को हासिल करता है। ये तो बाद की स्टेज है, इसके पहले तो अपने को संकल्प पर ही मास्टरी करनी है। हमारी तो सारी मास्टरी अंदर की, वर्तमान समय भले ही हमारी सेवाओं का बहुत विस्तार है लेकिन फिर भी कहेंगे बहुत आत्माएं अभी भी ऐसी हैं जिनके मन में शंकाएं हैं अपने प्रति, ज्ञान के प्रति। बहुत आत्माएं अभी भी ऐसी हैं, दुनिया में कितनी आत्माएं ऐसी। अब जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, जिस दिन प्रदर्शनी लगाई उस दिन बहुत लोगों को काम पड़ गया, आपकी प्रदर्शनी देखने नहीं आए वो, फिर आपको हो गया जी सेरिया की तो सेवा हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, 500 लोग आए थे, 500 तो उस दिन आए ही नहीं थे, कहाँ हो गई, 500 तो अभी भी बाकी जिनको कुछ नहीं मालूम, कहाँ हो गई सारी सेवा। तो क्या हम समझते हैं कि हम जिस एरिया में सेवा करते हैं वहाँ पूरी हो जाती, बहुत बच जाते हैं किसी भी कारण से? तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं, उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए बाबा ने कहा चलते फिरते भी मनसा सेवा करो। मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव कुछ दिन पहले हुआ। मेरी एक जानी पहचानी आत्मा थी, है भी अभी भी है वो, और मेरी लंबे समय के बाद उससे मुलाकात हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि वो तो व्यसनों के अधीन है। वो मेरे साथ पढ़ने वाली थी एक आत्मा, और मैंने देखा वो बहुत व्यसनों के अधीन है। उसके घर वालों ने भी कहा भाई ये बहुत व्यसनों के अधीन है। थी तो बहन, लेकिन बहनें भी तो व्यसनों के अधीन हो जाती हैं ना, कोई तंबाकू, कोई चूरट, कोई और भी कई प्रकार की चीजें होती हैं। तो मुझे बहुत दया आई उसका चेहरा देख के, उसका खर्चा देख के, महीने का 3,000, और इतनी छोटी आयु में वो इनहेलर, वो आता है ना बाजार में सांस लेने में तकलीफ, तो इनहेलर से वो श्वास लेती थी। तो मैंने सोचा कि इसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास तो कोई सेंटर था नहीं नज़दीक में, और मुझे भी आना था, मैं तो बस ऐसे बाजू से निकली तो उससे मुलाकात हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सूक्ष्म सेवा का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अमृत वेले कुछ दिन मैंने उस आत्मा को इमर्ज किया, शरीर को नहीं लेकिन आत्मा को इमर्ज किया। एक बार तो शरीर सामने आएगा ना, लेकिन उसके बाद, क्योंकि शरीर अगर लंबे समय तक आपके सामने रहेगा ना तो आपको अटैचमेंट आ जाएगी, आपकी जान पहचान है, लौकिक भावनाएं पैदा हो जाएंगी, ये मेरा फलाना लगता है, ये मेरा फलाना लगता है। एक बार शरीर सामने आया, ये आत्मा है, फिर वो आत्मा सामने आई और आपने उस आत्मा के 84 जन्मों को जैसे याद किया, ये वही आत्मा है जो पहले पहले परम धाम में थी और ये बाबा के बिल्कुल करीब बैठी थी, मैं भी इस आत्मा के बिल्कुल करीब थी, तो ये तो मेरी आज की भाई या बहन नहीं है, 5,000 पुराना मेरा इसके साथ नाता है। और जब हम परम धाम में थे तब तो गांव शहर घर भी अलग अलग नहीं थे, एक ही तो घर था, एक ही तो बाबा था, और ये आत्मा कितनी उजली थी, बहुत सुंदर थी, बहुत पवित्र थी, स्तोगुणी थी, अपने स्तो प्रधान स्वरूप में थी, बहुत पावरफुल थी ये आत्मा, इसका तो मूल रूप बहुत ही सुंदर है। और फिर ये आत्मा सतयुग में आई तो भी ये देवता ही रूप में थी, ये तो बहुत ही अच्छी आत्मा है, देवी घराने की आत्मा है, इसकी तो मंदिर में पूजा हो रही है, ये तो बहुत ही ऊँची पूजनीय। और उसके बाद इस आत्मा के मंदिर भी कितनी जगह पूजे जा रही हैं, लेकिन अंतिम जन्म में ये आत्मा अपने आप को भूल गई। इस आत्मा के ऊपर कितनी मैल की परत चढ़ी हुई है, कितना आवरण है। जैसे कपड़े को कई बरस आप धुलाई ना करो तो उसका तो ओरिजिनल रंग ही गुम हो जाता है, मैली मैल रह जाता है। तो इस आत्मा का तो देखो ना, ओरिजिनल रूप ही गुम हो गया है, तो मैली मैल रह गया। लोग इसको कहते हैं ये बहुत खराब है या बहुत खर्चीली है या बहुत ये करती है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कितनी महान आत्मा है। पर मेरे को तो मालूम है ना ये कितनी अच्छी आत्मा है, कितनी महान है, ये शिव बाबा की बच्ची है। तो इस आत्मा को फिर से अपने घर परम धाम की और अपने देवताई रूप की अनुभूति हो जाए, किसी भी तरह से ये अपने उस रूप को देखे। और जैसे ही उसका एहसास करेगी, देखेगी, एक धक से इसकी सब बुराइयां छूट जाएंगी। ऐसे अभ्यास किया तो मेरे को ये भावना तो गुम हो गई ना कि कोई मेरी जानी पहचानी आत्मा, मेरी तो 5000 साल पुरानी उसके साथ जान पहचान है, अब की थोड़े। और ऐसे थोड़े दिन जैसे अभ्यास किया और उसके बाद मैं दोबारा उस आत्मा से मिली, तो मैंने उसको कहा कि आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, चलो अपन 1 घंटा भगवान की चर्चा करेंगे, क्योंकि अकेली को सुनाऊंगी तो सुनेगी नहीं 1 घंटा। तो लोगों को बुलाऊंगी तो उनको सुनाने के बहाने ये भी सुनेगी, जब इसके घर में दूसरे लोग आएंगे तो। तो उसने बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया और बहुत खुश हुई। और मैंने उसको कहा, देख सत्संग में जब बुलाने वाला बैठता है ना, तभी बाहर के लोग ध्यान से सुनते हैं, घर वाला अगर यहाँ उठे वहाँ उठे ना तो बाहर वाले बिल्कुल नहीं सुनते। इसलिए तुमको बैठना है, जम के उठना नहीं है, बीच में कुछ भी होता रहे। तो वो मान गई और ऐसे 25-30 माताओं के बीच में वो बैठी और बाबा की सारी बातें, जैसे बाबा ने हमको कहा है, नए नए भाई बहनों को अपन सुनाते हैं, कर्मों की गति भी, आत्मा का ज्ञान भी, परमात्मा का परिचय भी, ऐसे करके 1-1.5 घंटा सुना सबने। सब आत्माएं बहुत खुशी हुई। और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ वो आत्मा उठी और मेरे पास आई। मैंने उसको अभी कुछ बोला ही नहीं था, उसने कहा मैं वायदा करती हूँ आज के बाद मैं इसको छूंगी भी नहीं, ये जितनी भी चीजें। और ऐसे कह करके सब, मैंने कहा देखिए 25 बहनें सुन रही हैं। उसने कहा हाँ, 25 की 25 बहनों के आगे मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि आज के बाद मैं इनमें से किसी भी बुराई को छूंगी भी नहीं। फिर मैंने उसको कहा ये बहनें आपको बार बार कहेंगी कि छोड़ना बड़ा मुश्किल है, देखेंगे कितने दिन छोड़ेगी। उसने कहा कुछ भी कहें मुझे, लेकिन मैं छूंगी ही नहीं। और ऐसे कहने के बाद उसने फिर मेरे पांव पकड़े और फिर कहती है देखो तुम कितनी दूर से आई है मेरे लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, तो मैं तुम्हारी इस इतनी मेहनत को ना जाया नहीं जाने दूंगी और मैं करूंगी, जरूर करूंगी। ऐसे कह करके मेरे को आशीर्वाद भी दो। मैंने कहा ज्ञान ये आशीर्वाद ही था, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं, भगवान की भी हैं, शुभकामनाएं ही आशीर्वाद होते। फिर 2 दिन के बाद मैंने उसको फिर फोन किया और पूछा भाई सब ठीक ठाक है? तो उसने कहा देखो मेरी तो जब रात को भी आँख खुलती है ना तो मेरे को बाबा ही याद आता है। थोड़ा बाबा का भी परिचय दिया था उसको, और मैंने तो आज रात को भी बाबा की किताबों से, कुछ किताबें भी उसको दी थी, कॉपी में उतारा, क्योंकि लिखूंगी तो पक्का हो जाएगा। और अभी भी मैं बाबा की किताब ही पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा मेरे को सुकून मिला, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। अब इस बात में अपने को क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि किसी भी आत्मा के वर्तमान कमजोर रूप को जब अपन देखते हैं ना तो वो और ज्यादा कमजोर होती है, और जब उस आत्मा के मूल रूप को, क्योंकि मूल रूप में तो अपन सभी शुद्ध बहुत महान और पवित्र आत्माएं हैं, तो जब उसके मूल रूप को देखते हैं तब उसको ताकत मिलती है। वर्तमान कमजोर रूप को देखते हैं तो वो आत्मा और ज्यादा कमजोर हो जाती है, और उसके मूल आदि अनादि रूप को देखते हैं तो उस आत्मा को शक्ति मिलती है। अब जब अपने को मनसा सेवा करनी है तो उसकी वर्तमान कमजोरी का तो एक भी संकल्प नहीं आना चाहिए, ये भाई इतने साल पुरानी इसकी बीमारी है, फिर इसने उस बीमारी, ये बुराई है, फिर इस बुराई के अधीन होकर इसने ये भी किया। मान लो वो रील चल पड़ती है अंदर में, तो अपन क्या कर रहे हैं? उसकी बुराई को और पक्का कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान को तो याद करना ही नहीं है ना। जैसे डॉक्टर भी क्या कहता है, वर्तमान बीमारी को वो महत्व नहीं, वो बोलेगा जी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना जी ये चलेगा जी, दौड़ेगा जी, इसका हाथ भी ये बिल्कुल धब्बा भी नहीं रहेगा जी, वो उसके उस फाइनल रूप को देखता है और तब वो इलाज करता है। वर्तमान को देखे तो डॉक्टर को भी दिल शिकस्ती आ जाए। तो अपन दिल शिकस्त कब होते हैं, जब वर्तमान रूप को देख लेते हैं, ये तो ऐसे है फिर ऐसे है, इसकी बीमारी तो बड़ी कड़ी है, उसने भी प्रयास किया तब भी नहीं छूटा, उसने भी कई बार हमको भी लोग कहते हैं बहन जी आप इसको क्या सुना रहे हो, इसको तो मैं हजार बार सुना चुका हूँ। तब जब कोई ऐसे कहता है ना, तब हम मन में सोचते हैं कि इसने हजार बार इसके वर्तमान रूप को देख करके सुनाया है, इसलिए नहीं बदलाई। और हम केवल इसके मूल रूप को, आदि अनादि रूप को देख के एक ही बार सुनाएंगे, ये जरूर बदलेगा। क्योंकि वो जो हजार हथौड़े मारे ना, वो बहुत कमजोर हथौड़े थे, और ये हथौड़ा बड़ा पावरफुल है। जैसे वो आज एक्सरे होती है, एक्सरे माना एक्स नाम की जो किरण है उसका नाम एक्सरे है, रे माना किरण। तो उस किरण को व्यक्ति के शरीर के अंदर जैसे प्रवेश कराते हैं, तो वो बिना चीर फाड़ किए वो रे अंदर बहुत सारा काम कर देती है, उससे अंदर के फोटो भी खींच जाते हैं और भी अंदर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो मनसा, लेकिन उसकी एक विधि होती है, तो ऐसे ये मनसा सेवा है, इसकी भी एक विधि है। समझो वो एक्सरे अंदर प्रवेश कर रही है उसकी, और अंदर ही अंदर उसका परिवर्तन कर रही है। बीमारी तो अंदर है ना, शरीर में तो है नहीं। आप अगर शरीर को देखेंगे तो बीमारी कैसे खत्म होगी, आपको आत्मा को देखना है, बात भी आत्मा से करनी है, चिंतन भी आत्मा का करना है, और आत्मा आत्मा के लिए ही शुद्ध संकल्प करना है, चाहे आपका उससे कोई भी नाता हो, उस नाते को तो याद ही नहीं करना है। और हमारा तो सबके साथ नाता अविनाशी है, सारी विश्व की आत्माओं के साथ अविनाशी नाता है, किसी एक दो के साथ थोड़े। तो ये मनसा सेवा की एक विधि है, उसके मूल आदि अनादि रूप को देखना। और दूसरा फिर कई बार ये तो चलो ऐसी आत्मा थी जिसके बारे में अपने को मालूम है कि भाई इसमें ये बुराई है, लेकिन बाबा तो ये भी कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं हर एक में शांति की कामना तो है ही ना, अशांत तो सभी हैं ही ना, और अशांत होने का कारण कोई ना कोई बुराई है। बुराई तो व्यक्ति को अशांत करती है, चाहे वो स्थूल बुराई हो चाहे वो सूक्ष्म बुराई हो। तो सामूहिक रूप में भी आप आत्माओं को इमर्ज करके, मूल रूप में इमर्ज करके आप उनके साथ बात कर सकते हो कि हे आत्मा या हे आत्माओं, मैं आपको एक बहुत सुंदर शुद्ध संदेश सुना रही हूँ, मैं आत्मा, आपको जो शांति चाहिए उस शांति को देने वाला, शांति का दाता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित है, आप आत्माएं अपना संबंध जोड़ो उस शांति के सागर के साथ, आप आत्माओं के साथ बात कीजिए, वो आत्माओं को पहुंचेगा। और किसी व्यक्ति में अगर कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा व्यक्ति है और आप उसको ज्ञान देना चाहते हो, लेकिन आप देह को देख करके कितना भी ज्ञान सुना लो, वो सुन बेसिक लेगा, परिवर्तन नहीं होगा। आप उसकी भी आत्मा के साथ थोड़े दिन लगातार बात कीजिए अमृत वेले, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ऐसे ही उसका कोर्स करा दीजिए आत्मा का, एक घंटा आत्मा को, एक दिन आत्मा का पाठ पढ़ाइए, परमात्मा का पाठ पढ़ाइए, 84 जन्मों का आत्मा को पढ़ाइए, आपके पास टाइम है तो, और फिर उसको ज्ञान दीजिए। तो वो ज्ञान अंदर ऐसे जाएगा जैसे उसके लिए जगह बनी ही पड़ी है, और नहीं तो वो बाहर निकल निकल करके आता है, आप डालते हो वो बाहर निकल जाता है, जगह बनी नहीं ना। पर आप, क्योंकि जब अपन सामने बोलते हैं ना, तो देखो बोलते समय इतना अभ्यास तो नहीं है कि कंप्लीट हमारी भी आत्मस्मृति हो, और जिसको अपन ज्ञान सुना रहे हैं कंप्लीटली उसको भी आत्मा रूप में देखें, इतना इतना आत्मिक भाव तो बोलते समय तो नहीं रहता ना, शरीर का आधार लेती, लेकिन जब अपन मनसा सेवा करते हैं उस समय तो 100% आत्म भाव रह सकता है, दूसरी आत्मा के प्रति भी और अपने प्रति भी, तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए वाचा की सेवा से भी अधिक कारगर, अधिक सफलता देने वाली और दूसरे को अधिक सुकून देने वाली, रिजल्ट ओरिएंटेड ये मनसा सेवा है। और ये कहीं भी चलते फिरते, जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आत्माओं से बात कीजिए, बाबा से बात करने के हम सब अनुभवी हैं ना, ज्योति बिंदु बाबा से चलते फिरते अपन बात करते हैं, ऐसे ही चलते फिरते अपन आत्माओं से बात कर सकते हैं, आत्माओं को इमर्ज करके आप जो उनको बताना चाहते हैं वो उनको ओरिजिनल रूप में इमर्ज करके उनको बताइए, वो सुनेंगे आपकी आवाज को। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, आज बाबा चमकती हुई मणियों को देख रही हैं, तो बाबा हमारे किस रूप को देख करके मुरली चलाते हैं, आदि अनादि रूप को देख करके, या भविष्य में डबल ताजधारी बनने वाले बच्चों को बाबा देख रही हैं, तो बाबा की एक एक बात हमको कैसी लगती है। 20,000 की सभा में भी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, क्योंकि बाबा आत्मा को देख के बोलती है ना, तो वो जैसे अंदर उतरती जाती है, बात उतरती जाती है, कोई हिलता भी नहीं है, इतना मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे बात मेरे को ही कही जा रही है, मेरे लिए, और परिवर्तन भी तुरंत साथ के साथ होता जाता है। तो ये कितनी कारगर विधि है, बाबा की थोड़ी सी मुरलियां, सीजन में 10 मुरलियां चलती हैं और पूरे ब्राह्मण परिवार को कितना डोज दे देती हैं, और अपन 10 भाषण भी कर लेते हैं 10 दिन लगातार, तो भी क्या होता है, इतना परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अपन बार बार फिर देह को देख लेते हैं, बिल्कुल आत्मा को ही सुनाए। इसलिए हमारी ये विधि बहुत अच्छी है कि आपको जहाँ सेवा करनी हो वहाँ पहले वायुमंडल बनाइए, बाबा ने सिखाया है ना, योग का दान दीजिए, वायुमंडल बनाइए, थोड़ा सा प्रकृति भी उससे परिवर्तित होगी और फिर आत्माओं को अच्छी टचिंग आएगी। ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत ही कारगर विधि है, इसलिए हम बच्चों को अब अधिक से अधिक इसका अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। और इस अभ्यास में अगर कुछ सफलताएं मिल जाती हैं तो आगे उमंग और बढ़ जाता है, बिना खर्चे की सेवा है ये। मैंने तो बहुत जानबूझ करके भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मैं देखूं कि मैं समझो ये करती हूं तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, और सचमुच वैरायटी प्रकार के एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, घर के लोगों के ऊपर, ज्ञानियों के ऊपर जो संपर्क वाले हैं उनके ऊपर, तो देखा कि हर जगह अलग अलग आत्माओं के ऊपर भी जब ये एक्सपेरिमेंट किए हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है, हरेक ने कैच किया है, सबकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वाइब्रेशन कैच करने की शक्ति सब में बहुत अच्छी है, वाणी को कैच करने की भले अलग अलग हो लेकिन वाइब्रेशन कैच आत्माएं सहज कर लेती हैं, सभी कर लेती हैं, ज्ञानी या जो नई संपर्क में आई हैं वो भी। तो हमें अपना मन बहुत शक्तिशाली बनाना है, मन को सब प्रभावों से मुक्त रखना है, आसक्तियों से, आकर्षणों से और बीती हुई बातों के प्रभाव से, क्योंकि मन पर कोई भी प्रभाव होगा तो वो जो आप जिधर दिशा में ले जाना चाहते हैं उधर नहीं जाएगा। बाबा ने इसी सीजन की एक मुरली में कहा था कि अगर किसी को पीछे से पकड़ा हुआ हो तो वो आगे उड़ नहीं सकता, तो अगर इस मन को कोई पकड़ के बैठा है, हवाई जहाज भी कब उड़ता है, उसको नीचे से कोई खींचने वाला नहीं है, अगर एक पावर नीचे भी उसको खींच रही हो तो वो आसमान में उड़ेगा कैसे, पंछी के पांव बांध दो वो उड़ेगा कैसे, तो अगर मन पुरानी यादों में बंधा पड़ा है तो ये उड़ेगा कैसे, और जिस डेस्टिनेशन पे अपन इसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ जाएगा कैसे, तो इसके लिए बार बार फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास और प्रभावों से मुक्त होने का अभ्यास, अनासक्त रहने का अभ्यास, बार बार शुद्ध संकल्प करने का अभ्यास, जितना ज्ञान की बातें बार बार अंदर में रिपीट होती हैं उतना ही मन शक्तिशाली बनता है। इसलिए थोड़े दिन पहले एक मुरली आई थी कि अगर आप सेवा की बातें भी चिंतन करते हैं तो वो भी निरसंकल्प है। हो गए होंगे 10-15 दिन की बात हो गई होगी तब ये मुरली आई थी। तो नेगेटिव और व्यर्थ तो आना ही नहीं चाहिए। एक भी नेगेटिव थॉट मन को कितना कमजोर कर देता है। जैसे एक बार बीमारी आई तो शरीर कितना कमजोर हो जाता है, तो एक नेगेटिव थॉट कितना कमजोर करता है, एक व्यर्थ संकल्प कितना कमजोर करता है। तो वो तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, सेवा के संकल्प आते हैं, कल्याण के संकल्प आते हैं, वो बेशक आए। अगर बीज रूप स्टेज नहीं भी बन पाती है तो ये संकल्प भले आए, इनमें भी आत्मा को एनर्जी मिलती है। तो अभी हम थोड़ी देर शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करेंगे। आप बिल्कुल स्थिर होकर के बैठेंगे और जिन आत्माओं की आप सेवा करना चाहते हैं उनको आप उनके ओरिजिनल रूप में इमर्ज करो, मूल रूप में। वो परम धाम में थी तो कितनी पवित्र थी, उस रूप में इमर्ज करके आप उनको जो कहना चाहते हैं आत्मा बन करके कहिए उनको। बाबा को भी साथ रखेंगे, उस आत्मा को भी मूल रूप में इमर्ज करेंगे, अपने आप को भी मूल रूप में इमर्ज करेंगे और संकल्पों के द्वारा उस आत्मा को आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहिए, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है।
अब तो बाबा मन कहता है,
मन कहता है, मन कहता है,
सांस सांस में तुम्हें बसा लें।